afisar gibi abi, yani oluyor. कोई आदमी परेशान कर रहा है, उसके पास जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना है, फिर ये हरद वाला के कमरे में दाखिले से पहले हमें पढ़ लेते हैं। यानी ये दिल नरम करने के लिए मोहब्बत की है। शोहर बीवी के बीवी से डरता हो तो बीवी के लिए पढ़ ले, बीवी शोहर से डरती हो तो वो पढ़ ले, तो बीवियों को भी सिखा दे। लेकिन जिसकी जो शोहर बीवी से डरता वो बीवी को ना सिखाए, क्योंकि अगर इसने पल कह गया डर का और उसने भी पढ़ लिया तो खाट हो जाएगी। हमारा एक दोस्त है, वो हंस के कहता था कि वो कहता था कि यार शादी होगी ना तो मैं सलाजीत खाऊंगा। तो उसको कहा किसी ने कि तुम सलाजीत खाओगे अगर तुम्हारी बीवी ने भी खा लिया। चलिए
चारों नामों को पढ़ने की तादाद से सुनिए जितना चाहो करो, और अगर मुस्तकिल तौर पर कोई मुसीबत है, कोई सता रहा है, तो हर पर नमाज के बाद सात मरतबा पढ़कर यूं कहो, ए अल्लाह अपने इन नामों के सत्ते में जो मुझको सता रहा है उसका दिल नरम कर दीजिए, उसको मुझ पर शफीक और मेहरबान कर दीजिए।
फिर नाम बताए चारों,
चार नाम, चार अस्माए इस्माए, या सुकूत या कुदूस या वसूल या वजू, या सुकूत या कुदूस या वसूल या वजू, या सुकूत या कुदूस या वसूल या वजू। बस अब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे, इस मजलिस को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो लोग यहाँ आ रहे हैं, खवातीन हैं या हमारे बात है, या अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से, हम सबकी अपनी रहमत से इस्लाह फरमा दे, या अल्लाह हम सबका तस्किया फरमा दे, या अल्लाह हम सबको गुनाहों से नफरत और कराहत नसीब फरमा दी, और हम सबको तक्वा नसीब फरमा दी, या अल्लाह हमारी जानों को जब फरमा कर अपना बना ली, या अल्लाह असबाब मासियत से हमें दूरी और तासुब नसीब फरमाइए, हम सबको और खवातीन बहनों को, बेटियों को, माओ को, सबको अल्लाह अपना बना लीजिए, या अल्लाह हम सबको औलिया सिद्दीकीन और अपने दोस्तों में शामिल फरमा कर उनके अखलाक और आमाल यकीन नसीब फरमाइए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना
सलाम। कैसे हैं जनाब? بسم الله الرحمن الرحيم بزرگوں کے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ ان سے استفادہ और फायदा उठाने वाले और नफा उठाने वाले, हर आदमी अपने ज़र्फ के मुताबिक फायदा और नफा हासिल करता है। तो इसकी मिसाल इस जमाने को में समझने के लिए आसान है कि जब यूपीएस लगवाते हैं या सोलर पैनल सोलर सिस्टम लगवाने जाएं, तो वो पूछते हैं कि आपको ये जो बैकअप चाहिए कितने घंटे का चाहिए। तो कहता है कि जी कितने घंटे, 2, 4, 6। और लोड इतना, कहते हैं साहब इतने घंटे के लिए आपको ये वाली बैटरी इतनी लगानी होगी। तो जितनी ज्यादा बैटरी होगी बैकअप उतना बढ़ता चला जाएगा। ये इसका उसूल और कायदा तरीका है। इसी तरीके से अहलुल्लाह से नफा फायदा उठाने का, अपने शेख की सोबत से नफा फायदा उठाने के लिए अपने दिल की बैटरी की चार्जिंग भी जरूरी है। अब हर आदमी की बैटरी अलग अलग होती है, फिर वो लोग एक नसीहत और क्या करते हैं कि जनाब आप अपने लोड को जरा कम करें। मसलन पंखा जरूरत नहीं है न चलाए, जहां बिजली जिस वक्त बंद करनी चाहिए उस वक्त बंद करे, जरूरत की इस्तेमाल करे, वरना आपका जो बैकअप है वो कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से जब शेख की सोबत में बैठता है तो उसकी सोबत से दिल की बैटरियां वो चार्ज हो जाती है, फिर नेक आमाल की उसका नतीजा ये कि नेक आमाल का वोल्टेज पूरा होता है, पूरा लगता है। जैसे वोल्ट पूरा हो तो पंखा अपनी रफ्तार से चलता है। और अगर वोल्टेज कम हो तो पंखे की रफ्तार भी आहिस्ता हो जाती है। और यही तमाम अशिया पर जो बिजली से इस्तेमाल होती है उसका असर पड़ता है। तो इसी तरीके से जब इंसान सोहबत शेख में जाता है तो उसके ईमान की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अब अगर वो नेक आमाल करे, सुन्नत पर अमल करे, ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि आदमी दीन का काम करता है, दीन की खातिर आगे बढ़ता है, लेकिन उसका अमल अगर खिलाफ सुन्नत है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आदमी बावजूद दीन पर चलने के, दीन का काम करने के मकबूल ना बनेगा सारी जिंदगी। अगरचे कितने ही लंबी लंबी इबादात हो, कितने ही उसके दीनी तौर पर मामलात हो, लेकिन अगर सुन्नत नहीं है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह तो उसको साफ यूं फरमाते थे, गर हवा पे उड़ता हो वो रात दिन, गर हवा पे उड़ता है वो रात दिन, तन के सुन्नत जो करे शैतान गिन। इस पर एक वाक़ मेरे शेख और मुर्शिद हज़रत वाला नंबर अल्लाह मक़दम फरमाते थे कि एक बुजुर्ग थे, उनको मालूम हुआ कि फला इलाके में कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए हुए, उनकी शरई मजबूरी थी, जब पहुंचे तो वो बुजुर्ग तशरीफ ले जा चुके थे। अब जब तशरीफ लाए तो जिस मकाम पर ठहरे हुए थे तो बताया कि अब जी वो तो तशरीफ ले गए।
उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मैं ये मुलाकात ना कर सका। फिर फरमाने के अच्छा यूं करो भाई, वो उस जगह ही की जियारत करा दो जहां उन्होंने नमाज अदा फरमाई है। कच्ची जमीन, कच्ची मिट्टी का जमाना था, इसलिए आप फिका की पुरानी किताबें पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि सजदे की जगह पे कंकरों को दुरुस्त न करें, ये भी मकरूह पुरानी किताबों में लिखा रहता है। अब तो माशाल्लाह कालीन जनाब और क्या क्या उमदा से उमदा चीजें, तो मैं इस जमाने वाला पढ़ेगा कंकर का कहां से जिक्र आ गया, इसलिए मना किया कि पुरानी किताबें ना पढ़े। मौजूदा वो बुजुर्गान दीन उलमाए इकराम जो इत्तेबा शरीयत और सुन्नत का मामला कर रहे हैं उनकी बात माने, या पुराने हालात से वाकिफ हो, समझे कि कैसा चल रहा था मामला। बहरहाल वो जो सजदे की जगह थी फरमाया वहां ज़ियारत का, तो जहां नमाज पढ़ी है उस जगह की ज़ियारत कर लूंगा, अल्लाह ताला मेरे लिए इसी को नजात का जरिया फरमाते हैं। जब उस जगह की ज़ियारत की तो देखा कि सजदे के जो निशान थे बने हुए, सजदे के का सुन्नत यह है कि हाथ भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए, उंगलियां इस तरह मिली हुई हो सजदे में, बिल्कुल ऐसे मिली हुई और बंद, और वो भी क़िबले की तरफ बिल्कुल सीधी क़िबले, ऐसे टेढ़ी ना। तो देखा जो सजदे का निशान था वो टेढ़ा था और पांव की उंगलियां भी मोड़कर उसका रुख भी क़िबले की तरफ सजदे में, ऐसा ऐसे उंगलियां मोड़कर उसका रुख भी क़िबले की तरफ हो, ये मर्दों के लिए सुनना था। औरतों का सजदे का तरीका ये नहीं है, उसमें तमीज है और फर्क है। तो देखा कि उंगलियां टेढ़ी, आह खींची और फरमाया आह, जिसका अमल सुन्नत के खिलाफ वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अब आप बताइए एक सुन्नत पर फरमा रहे ये बात, इसलिए सुन्नत का बहुत असर होता है। अब वो चाहे सुन्नत इबादात से मुताल्लिक हो, मुआमला से मुताल्लिक हो, मुआशरत से मुताल्लिक हो, अखलाकियात से मुताल्लिक हो, अगर किसी सुन्नत में कमी है तो उसका नतीजा उस ताल्लुक और नस्बत जिसको हम हासिल करना चाहते हैं उसका असर उस पर पड़ेगा, और हम लोग बावजूद मेहनत के उस चीज से महरूम रहेंगे। अलबत्ता यहां पर एक चीज का ख्याल जरूरी है कि अब एक आदमी ने मिसाल है कि सुन्नत सीखी कि जी जब सजदे में जाएं तो कमर बिल्कुल सीधी उतरे, बिल्कुल सीधी, और जब सजदे से उठे तो उठते वक्त भी पहले पेशानी, फिर नाक, फिर घुटने और फिर कमर सीधी करके ऐसे उठे, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री जाविया कायमा के साथ, ये सुन्नत तरीका है। कलम याद रख करके दिखाओ, नहीं कर लो नीचे घुटने तक उतर जाओ, ये सीधी, और खड़े हो गए तो भी ऐसे कमर 90 डिग्री ऐसे होनी चाहिए। अब इसने सुन्नत सीख ली, अब इशारों को देख रहे, अब यही होता है सबको तो आता है। अपनी तरफ फिक्र कम होती है, दूसरों की ज्यादा शुरू हो जाती है। अब जनाब मान लो किसी के पास गया, वो बुजुर्ग मशहूर है, अब उनके पास गया तो देखा कि वो कमर टेढ़ी करके उतर रहे, उसने कहा देखो ये है खिलाफ सुन्नत। तो इसमें याद रखिएगा कि अब दो हालतें हो सकती है, या तो वो बुजुर्ग मशहूर जो है, मशहूर बुजुर्ग जवान है या बूढ़े हो गए। अगर जवान है तो दो हालतें होंगी, या तो सेहतमंद होंगे या बीमार हो सकते हैं। तो बीमार आदमी के लिए गुंजाइश है कि वो कमर को सीधी के बजाय थोड़ा सा ज़रा सम करके उतर सकता है। इसी तरह किसी बेचारे की कमर में तकलीफ है, उसके लिए भी गुंजाइश है। बूढ़ा हो गया, उसके लिए भी गुंजाइश है। तो पता ये चला हालत उज्र में किसी आदमी की उज्र की हालत है, तो उसकी उज्र की हालत में उसके लिए गुंजाइश है कि वो कभी कभी बज़ाहिर उसका अमल सुन्नत के खिलाफ मालूम होगा। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि एक मजलिस से इस बात का अंदाजा मत लगाओ कि आया ये शख्स मुत्तबे सुन्नत है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त ऐसी हालत हो कि ये सफर से आया थका हुआ है, तो उस वक्त बदगुमानी करने के बजाय फरमाए कि उसके पास कुछ दिन आना जाना कर लो, देख लो, तब पता चल जाएगा कि आया वो गुंजाइश पर अमल कर रहा है या उसकी आदत सुन्नत के खिलाफ है। अगर किसी की आदत खिलाफ है सुन्नत है तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी की आदत सुन्नत के खिलाफ है तब तो कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर माजूर है तो माजूर से बदगुमानी करने का कोई फायदा नहीं है। तो शेख की सोबत से जब वो बैटरी चार्ज होती है ईमान की, तो अमल सालेह सुन्नत पर अमल और जमात की नमाजों की पाबंदी, मस्जिद की सफ़े अव्वल मसबूक न बनना यानी रकात न छूटे, और इसी तरह से अपने मिलने वालों से चाहे तिजारती तौर पर हो चाहे पड़ोसी तौर पर हो उनके साथ मेल और मुलाकात में अखलाकी बुलंदी का कायम रहना, यानी कि किसी से मामला हुआ बस हफ्ते से उखड़ गए, और अपने माँ बाप बीवी के साथ इस चीज का एहतमाम के अपने अखलाक को काबू में करना, कंट्रोल करना। जब बैटरी चार्ज होती है तो नतीजा ये होता है सारे काम ठीक होते हैं। जी जमात भी, जमात से नमाज का एहतमाम भी हो रहा है, सुन्नत की तरफ तवज्जो भी हो रही है, और जनाब बीवी के साथ भी मामला एंड बर्ताव जरा ठीक चल रहा है। क्या मतलब बर्ताव कैसे ठीक है? बीवी ने बर्तन उठा के मारा, उसने हंस के डाल दिया, और जब बैटरी लो हो जाती है उसने बर्तन मारा, उसने भी आगे से पलट के मार दिया। किसी ने कुछ कहा तो मौका था कि तहम्मुल करके अपनी जबान को बंद कर ले और जवाब ना दे। बाद लोगों का एक मिजाज और भी होता है, जवाब नहीं देते, जवाब कोई होता है लेकिन नहीं देते, और कह भी देते हैं मेरे पास भी जवाब है लेकिन अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी बैटरी चार्ज है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी कमजोरी की अलामत है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शख्स था, उसकी किसी से लड़ाई, उसने कहा इतनी सुनाऊंगा कि याद करेगा। तो दूसरे ने कहा तू एक सुनाएगा, मैं तुझे 10 सुनाऊंगा। तो मारूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, फरमाया तुम मुझे 10 के बजाय 100 भी सुना दो और मैं तुम्हें एक भी नहीं सुनाऊंगा। बस उस बहुत भरे दिल से, दर्द भरे दिल से फरमाया कि वो शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए, कदमों में गिरकर रोने लगा कि अखलाक तो इसको कहते हैं। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो काम भी ठीक लग चलता है, और जब बैटरी में कमी हुई फिर नतीजा क्या हुआ कि फिर 10 सुनाऊंगा तुझे, क्या याद करेगा, बल्कि फोन बंद करने के बाद दोबारा फोन करेगा, ठीक है, और सुन, ठीक है, क्यों, अभी उसको चूंकि कल्ब में नूर नहीं है ना, तो वो नूर ना होने की वजह से वो भड़कता है बार बार, वो बार बार भड़कता है, जैसे आग होती ना ठंडी होती है तो एकदम फिर भड़क जाती है, और बाद लोग जल्दी पर तेल का काम भी करते हैं। तुझे बोला, अच्छा हाँ वाकई, लेकिन जब नूर होता है तो वो नूर उस नार को बुझा देता है, और ये वही चीज है जिसको बुखारी शरीफ में सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाएंगे, कुरान पाक में है यौम नकूलु लजहन्नम हल इंतलाती, कि हमारा इरशाद होगा जहन्नम से, क्या तेरा पेट भर गया, तई हल मिन मज़ीद, और कुछ भी है। तो अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये कदम मुबारक वयज़ऊ कदमहु, अपना कदम मुबारक रखेंगे, क्या मतलब, अल मुराद बिल कदम अत्तजल्ली उल खास, कदम से मुराद अल्लाह ताला की खास तजल्ली है। तो हजरत ने फरमाया कि देखो, नार का इलाज, आग का इलाज नूर से किया, इसलिए फरमाया कि जब शहवत के तकाजे, गंदे अखलाक के तकाजे, ये आग है आग, इसका इलाज किससे होगा, नूर से, इसका इलाज नूर से होगा। और हजरत वाला एक नुक्ता फरमाते थे, फरमाते देखो, नार में अलिफ है, नार सीधा, और नूर में वाव है, फरमाया नार में अकड़ होती है और नूर गोल होता है, उसमें तवाज़ो होता है, इसलिए फरमाया जो नूरानी आमाल करता है उसके अंदर आजिज़ी आती है, ये उसकी खासियत है, तवाज़ो पैदा होता है, और जो नारी आमल करता है गुनाह, तो उसके अंदर अकड़ पैदा होती है। इसी से इसलिए इबादात से अगर नूर नहीं पैदा होगा, ये इबादत से उसने कोई और मकसद रखा, तो फिर नूर नहीं पैदा होगा, तो इबादत करने के बाद भी इसके अंदर अकड़ आएगी कि मैंने ये काम किया। तो ये है वो बैटरी की फायदा, अपनी बैटरी कैसे चार्ज करें, तो उसके लिए सोलर पैनल लगाए। देखिए सूरज की शुआ में अल्लाह ताला ने ऐसा रखा कि बिजली चल जाती है, फरमाते तो यही तो चीज है कि अल्लाह ताला ने अपने औलिया की नजरों में ये असर रखा, सूरज की शुआ से बिजली मिलती है, इन अल्लाह वालों की शुआए बसरिया से तजल्ली मिलती है, इससे वो कल्ब की बैटरी चार्ज होती है और दिल की दुनिया बदल जाती है, और उसके अंदर आला जर्फी पैदा होती है। लेकिन फरमाते थे एक शर्त और भी है कि बर्तन सीधा हो, बर्तन सीधा हो, टेढ़ा ना हो। इसकी मिसाल में वो एक आदमी ने अपने मुलाजिम से कहा कि जाओ 50 रुपए का दही ले गया, और वो प्याला दिया जिसके नीचे पेंदा भी होता है, उसके वो भी छोटा सा प्याला होता है। अब उसने क्या किया कि दही वाले के पास गया कि भाई 50 रुपए का दही दे दो, तो उसने दही तोलना शुरू किया, बोला जनाब ये तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, और बाकी कादू बर्तन तो आपका जर्फ तो भर गया। अच्छा, उसने प्याला था ऐसे सीधा, उसने कहा ये लो बाकी इधर डाल दो। अच्छा जनाब, उसने इधर डाल दिया, शुरू किया, अब वो बर्तन लेके इसी तरीके से उल्टा बर्तन करके मालिक के पास गया, मालिक ने कहा 50 रुपए का दही मंगवाया था, इतना सा लाया, नहीं और भी लाया, तो बाकी क्या है? कहा ये तू जो थोड़ा सा था वो भी गया। तो इसलिए फरमाते थे कि बर्तन, दिल का बर्तन सीधा हो, बदगुमानी बद एतकादी ये ना, क्योंकि बदगुमानी एतराज बद एतकादी लेकर जाएगा। एक तो होती बे एतकादी, ये इतनी बुरी नहीं है जितनी बद एतकादी बुरी है। एक होती बे एतमादी, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी बद एतमादी बुरी है। एक है बेअदबी, वो इतना बुरा नहीं है जितना बद अदबी बुरी है। बे और बद का फर्क समझ में आ रहा है ना? बेअदबी तो यह है कि अदब नहीं है, और बद अदबी तो यह है कि बुरा अदब कर रहा है, बुरा मामला कर रहा है। तो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे ही फरमाया कि अगर बर्तन उल्टा होगा तो नतीजा क्या निकलेगा, कभी बर्तन यूं कर रहा है कभी वो कर रहा है, उसको नतीजा होगा कि फिर वही बात, फैज नहीं मिलेगा, फैज नहीं मिलेगा। कुर्ता टोपी ये तो सब हो जाएंगे लेकिन आगे बात नहीं बढ़ेगी, आगे बात नहीं बढ़ेगी। जी जाहिर में सोलर पैनल भी लगा होगा, इन्वर्टर भी होगा, बैटरियां भी होंगी, लेकिन बिजली नहीं आ रही, तो भी क्या बात है जी? पता चला अंदर वायरिंग ठीक नहीं है तो नतीजे क्या निकलेगा, बैटरी चार्ज भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन ये सुन्नत से रास्ता नहीं लगा रहा, तकरीर सुनता है इधर से सुन के उधर ही, या उल्टा मामला रखा हुआ है, गलत वायरिंग कर दी है, उससे तो अलग नुकसान होगा। जैसे कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाए 220 से ज्यादा, तो नतीजा है कि पंखे बत्तियां चीजें उड़ा देता है, वायरिंग जल जाती है। फिर उसी वायरिंग पर अगर अगर ये दोबारा पंखा भी लगा ले फिर भी जलता रहता है, फिर इससे फिर वायरिंग दुरुस्त करनी पड़ती है जनाब। इसलिए कोई ऐसा अमल हो तो फिर उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक आदमी ने दरख्त लगाया, सर्दी का जमाना आया, ठंड लगी, उसने उसी लकड़ी इकट्ठी की, उसी दरख्त की जड़ों में बैठकर आग जलाई, हमारा जल जगे, इसकी जो जड़ें जल गई। अब मुंतजर है कि फल है, फल ही नहीं आ रहा, बगैर दरख्त हरा भरा भी है, क्योंकि जमाने बाद पता चलता है कि जड़ें जल गई, बजाय हरा भरा भी होता है कि सब कुछ भी नहीं, या हल्का फुल्का हरा भरा रहता है लेकिन फल पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। बाजी दरख्त है बिल्कुल हरे भरे नजर आते हैं लेकिन फल पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। यही हाल इसका होता है कि जाहिर तो नजर आएगा, टोपी दाढ़ी शलवार टखनों से ऊपर ये नमाज भी पढ़ रहा हो, लेकिन अंदर इसके कुछ नहीं, उस नमाज में भी कुछ नहीं होगा। इसलिए फरमाया इसका अहतमाम, तौबा कसरते तौबा से वो वायरिंग बदलती है, और अगर माली मामलात है तो उसको पूरा कर ले, किसी को सताए उससे माफी मांग ले, विरासत देनी है विरासत दे दे, कर्जा वापस करना है कर्जा वापस कर दे, नमाज बाकी है नमाज पढ़ ले, रोजा बाकी है रोजा रख लो, यहां पर ये करना। यानी किसी को अगर किसी की इज्जत और आबरू को नुकसान पहुंचाए उससे माफी मांगे, माली नुकसान पहुंचाए माली उसको नुकसान का इजाला करे पूरा करे। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक बुजुर्ग थे, किसी ने उनसे कहा कि हजरत हमारे यहां मोहल्ले में अच्छी फला जगह से जब हजरत आपने देखा होगा मैं वहां गुजरता हूं तो पूरा हर तरफ मुझे अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं सिवाय एक घर के, वो ऐसा लगता है कि नूर में डूबा हुआ। हजरत इसका क्या राज है? तो उन बुजुर्ग ने गर्दन झुकाई, फिर गर्दन उठाकर फरमाया कि बेटा ये लोग वो हैं जो जनरेटर रखने की सलाहियत, जिनके पास जनरेटर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज का अहतमाम, यानी गोया कि हम अपनी मेहनत को जाया न करें, बैटरियां बचा लें। अब तो बालों में सफेदी शुरू हो गई, अब तो बालों में सफेदी भी शुरू हो गई। बचपना कब तक चलेगा? अब तो अब कल एक साथ हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह हमारे से ताल्लुक, हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना शाह की मदर साहब दामन का तुमसे ताल्लुक, सुबह फजर की नमाज हजरत उनके बच्चे यहीं रहते हैं और बहुत खास ताल्लुक वाले लोग, वो शिकारपुर से आए हुए थे, सुबह फजर की नमाज हजरत के साथ पढ़ी। माशाल्लाह पे हजरत का जिक्र में बैठे, फिर हजरत का दर से हदीस होता है, उस दर से हदीस में बैठे मुलाकात करके सब गए, और फिर रिश्तेदार से कुछ मिलना है। मगरिब के बाद में पहुंचा पता चला जी उनके जनाजा, अचानक तबीयत खराब हुई, अब शिकारपुर जाना था, अब जनाब वक्त आया, अब जान सुपुर्द कर दी, और मजलिस रात की मजलिस के बाद उनका जनाजा हुआ। ऐसे हजरत फरमाया इमरजेंसी भी जा रहे हैं, पता ही बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद आना जाना कुछ, लेकिन क्या वक्त आ गया तो हम लोगों को कौन सा वक्त मालूम। आकर फजा बाहोश को बेहोश कर गई, हंगामा हयात को खामोश, अल्लाह या अल्लाह, ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि किस वक्त क्या हाल। इसलिए तैयारी कर, मुआमला दुरुस्त करें, अपने आमाल सुन्नत पे ढालने की करें, अखलाकी तरक्की की फिक्र करें, शेख जो बता रहा है उस पर जान समझ करें। शेख को ये ना कहें अगर आप होते तो आपको पता चलता है, मेरी जगह आप होते तो आपको पता चलता है, ऐसा न जबान से कहें न अपने हाल से कहें, गोया के शेख को पता नहीं क्या होता है। अल्लाह वालों को अपने तराजू में न तोले, एक जर्रे ने पहाड़ से कहा कि मैं तुझे अपने तराजू में तोलना चाहता हूं, तो पहाड़ ने हंसकर कहा कि जब तू मुझको तोलने जाएगा न तू रहेगा न तेरी तराजू रहेगी। इन अल्लाह वालों को अपने जर्फ में न तोले, अपने तराजू में न तोले, कि ये होते तो इनको पता चलता है हमारे क्या हालात है, अपने तराजू में न तोले। अल्लाह ताला हम लोग को फहम अता फरमाए, हकीम उम्मत की दुआ, अकुल सलीम قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما، یا اللہ عقل سلیم قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرما، اور ادب عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہمارے دینی نقصانوں کو پورا فرما، اور ہمارے جو لاسز ہیں خصوصا ویسٹیج کے لاسز उसको दूर फरमा दे। कोई काम करता उसमें वेस्टेज आती है ना, ऐसा ना हो, इसमें परफेक्शन मुमकिन है, 0% वेस्टेज पे आ जाना ऐसे मुमकिन है, और अगर कोई वेस्ट है वो भी कारामत होता है। इसलिए बातों की वेस्टेज भी बिकती है, तो मोमिन की अगर कभी वेस्टेज हुई गुना बरबिनाय बशरीत तौबा करके उसको भी कारामत बना दे। यहां तो नुकसान है ही नहीं, घाटा है नहीं, लेकिन फिक्र करे, फिक्र पैदा हो जाए, फिक्र सबसे बड़ी जो कमी होती है, जो शेख बरसा हा बरस यानी एक मुद्दत तक जो सारी मेहनत करता है वो इसी पर करता है कि जाने में फिक्र पैदा हो जाए, क्योंकि काम तो मुरीद ने करना है। जब तक फिक्र पैदा नहीं होगी वो कहे तवज्जो डाल दें, फैज दे दें, बरकत दे दें, वो तो दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पकड़ के एक एक चीज करेगा, बरकत अल्लाह ताला और बरकत इसी का नाम है कि तवज्जो और फिक्र पैदा हो जाता है, और सोबत की बरकत क्या होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल में बात आती रहती है कि देखो यार ये मैं गलत कर रहा हूं, अब मुरीद को हिम्मत की जरूरत है कि उस गलती की तलाशी करें, इसको कहते हैं बरकत। ये थोड़ी कि एहसास ही ना हो, जिस जालिम को एहसास नहीं हो अगर गलत काम करके, ये खतरनाक काम है, कमी है इसके अंदर, एहसास हो। अब शेख की बरकत ये है, अपनी इज्जत क्या है, माफी मांगो ना, अल्लाह ताला ऐसा हाल बना रहे हैं और 100% तकवा वाली हयात नसीब फरमाते हैं। वाखर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तीन होता है हजरत वाला रहमत के लिए साल के लिए Yeah.